संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम है। आचार्य कुंज कुंज देव ने 2000 बरस पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसकी गाथा नंबर 11वीं चलानी है। 11वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चलानी है। बात मात्र इतनी नहीं है, बल्कि अभी हमने जयपुर में से आरंभ किया है और शिविरों में, खासकर दोनों शिविर लगते हैं उनमें इसी को चला रहे हैं, और इसीलिए इसके कंक्लूजन में इसे आगे बढ़ाना है। 10 गाथा तक वहां हो चुका था, इसलिए यहां 11वीं गाथा ली जा रही है। 10 गाथाओं में मंगलाचरण के बाद आचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्र भक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। एकत्र भक्त का क्या मतलब है कि जो पर से भिन्न है, जुदा है और अपने में अखंड है, ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप तुम्हें मैं बताऊंगा। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की और 6वीं गाथा और 7वीं गाथा में उन्होंने उसे बता दिया पूरा, संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आप इन्हें समझाने में व्यवहार न्याय का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? तो उसके उत्तर में उन्होंने 8वीं गाथा में कहा कि भाई मिलिच्छ को मिलिच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है, उसी प्रकार निश्चय को व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। और वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है इसे 9वीं और 10वीं गाथा में बताया, और अंत में ये कहा कि व्यवहार के द्वारा हमने भगवान आत्मा को समझाया अवश्य है, लेकिन व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया कि मिलेच्छ को समझाना हो तो मिलेच्छ भाषा का उपयोग करना उतना बुरा नहीं है, लेकिन मिलेच्छ हो जाना सबसे बुरा है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही व्यवहार से समझाना तो ठीक है, लेकिन व्यवहारी हो जाना ठीक नहीं है, व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब आज की भाषा में हम बात करें तो हम कहेंगे ऐसे जो अंग्रेजी जानते हैं और वो जो हिंदी अच्छी तरह नहीं समझते, संस्कृत नहीं समझते, प्राकृत नहीं समझते, गुजराती नहीं समझते, तो ऐसे लोगों को अंग्रेजी भाषा में कोई समझाए तो उनकी समझ में कुछ आ सकता है ना? तो अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता है उनको समझाने के लिए, तो हम भी अंग्रेजी भाषा पढ़ करके उन्हें समझाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेज हो जाना तो ठीक नहीं है ना? क्यों बोलिए? हमारे देश में ऐसा ही हुआ है। अंग्रेजी भाषा तो 1 अरब 10 करोड़ लोगों में कितने लोगों को आती है, और जिनको आती है देरी तक खाने पीने उसमें बैठने की अंग्रेजी जानते हैं, डॉक्टर लोग अकेले दवाइयों की अंग्रेजी डालते हैं, वकील लोग अकेले कानून की अंग्रेजी जानते हैं, हल में ना, ये समय सार की अंग्रेजी कोई नहीं जानता है ना? लेकिन अंग्रेज सब हो गए हैं, सूट पैंट धारी सब हो गए ना? क्यों? मैंने हुआ उल्टा है। आचार्य कहते हैं कि मिलेच्छ भाषा सीख लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिलेच्छ हो जाना ठीक नहीं है। हमने मिलेच्छ भाषा तो सीख नहीं पाई, लेकिन मिलेच्छ हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजों को समझाना है तो अंग्रेजी में समझाओ, लेकिन अंग्रेजों जैसा हो जाना आचरण में, खान पान में, उठने में, बैठने में, ये अच्छी बात नहीं है। जब व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है ऐसा कहा तो शिष्य का ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब वो इतना बड़ा काम करता है कि वो हमें त्रिकाली देव भगवान आत्मा को समझा देता है, उस तक पहुंचा देता है ना, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? तो भी अच्छी बात नहीं है, सज्जनता की बात नहीं है। अपन ये कहें कि उनने हमारा बहुत उपकार किया, क्यों तो इसको तो मानना, लेकिन उनको उपकारी नहीं मानना। ये बात भाई, उनका जीवन में अनुसरण नहीं करना, दो बातें एक साथ क्यों होंगी? यदि व्यवहार मैंने हमारा इतना सहयोग किया है तो उसका अनुसरण भी हमें करना चाहिए, करना है ना। तो उसके उत्तर में ये ज्ञानी गाथा आई है सामने, जिसमें लिखा है व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देश दो शुद्धमयो भूयस्व मत्थ दो खलु सम्मादित्थी हवदी जीवो। व्यवहार में अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है। निश्चय नय का आश्रय जो लोग लेते हैं वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। हम सबको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए हमें इस गाथा को समझना चाहिए कि भूतार्थ अर्थ क्या का अर्थ क्या है और अभूतार्थ का अर्थ क्या है। तो भूतम अर्थम प्रद्योतयति भूतार्थः, भूत माने मौजूद, जो पदार्थ मौजूद है उसे भूत बोलते हैं, है ना। भू धातु है वो होने के अर्थ में है, भवति माने होता है, तो भूत माने जो मौजूद है, ऐसा अर्थ माने पदार्थ, उसका नाम है भूतार्थ, है ना। तो क्या निश्चय नए जो बात कहता है वैसा जगत में पदार्थ मौजूद है, इसलिए वो नए भूतार्थ है। वो जो बात कहता है वैसी चीज मौजूद है। हम कहते शक्कर मीठी है तो मीठी शक्कर इस जगत में मौजूद है, ये कल्पना लोक की बात नहीं है। और अभूतार्थ कि वस्तु जैसी नहीं है ऐसी वस्तु को बताए, उसका नाम है अभूतार्थ। तो कहते निश्चय में भूतार्थ है और व्यवहार में अभूतार्थ है, और जो भूतार्थ में के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य अमर चंद्र देव ने इसकी टीका में एक उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, पर वो उदाहरण ये है कि जैसे गंदा पानी है, मैला पानी है, और एक आदमी को बहुत जोर की प्यास लग रही है, समझे ना, तो यदि वो गंदा पानी पिएगा तो निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा, है ना। और इसलिए एक पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है, ऐसा सोच के नहीं पिएगा तो प्यासों मर जाएगा, मरना तो है ही क्या, मतलब। और दूसरा पानी उपलब्ध नहीं है, तो वही पानी उपलब्ध है, इतनी जोर की प्यास लग रही है कि पानी नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा, और पिएगा तो बीमार हो जाएगा, तो वैसे मरेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या करे। तो कहा अज्ञानी तो भैया पानी पिए बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसलिए अब जैसा है अच्छा बुरा पी लो, बीमार होंगे तो बाद में देखा जाएगा, जो कुछ होगा सो निपटेंगे, वैद्य डॉक्टरों के पास जाएंगे, कोई दवाई कराएंगे, क्यों ऐसा समझकर वो गंदा पानी पी जाते हैं। और कुछ अज्ञानी ऐसे होते हैं कि वो गंदा पानी तो गंदा है, पीने लायक है ही नहीं, तो पीते ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी जन क्या करते हैं कि उसमें फटकरी आदि डाल के, निर्मली शब्द का प्रयोग है सीधा में, उसका नाम भी निर्मली इसलिए पड़ा है कि पानी में डाल दो तो पानी को वो निर्मल कर देती है, पानी के मैल को नीचे बैठा देती है। तो कहते निर्मली को डालकर ज्ञानी जन कि जानते हैं तो उस पानी को फेंकते भी नहीं है और पीते भी नहीं है और उसमें निर्मली डालकर जो निर्मल जल निकलता है उसे पीते हैं और वो सुखी रहते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो भगवान आत्मा है ये वर्तमान अवस्था में मेला है, राग द्वेष से मेला है, शरीरादिक के संयोग में है, स्त्री पुत्रादिक के चक्कर में फंसा हुआ है, तन काराग्रह बदता बेरी परिजन जन रखवाले। इस शरीर जेल है और पत्नी जो है वो पैरों की बेड़ियां हैं बंधन में रखने के लिए, तो परिजन जन रखवाले, रखवाले का क्या अर्थ होता भैया? रक्षा करने वाले। जरा सोचना, देखो रखवाले दो तरह के होते हैं, एक तो ये जो चोर डाकू बदमाश होते हैं ना चक्के, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और अब वो भाग ना जाए, क्यों? इसके लिए उनको जेल में डाल देते हैं और फिर उनके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं जो ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्यों? और फिर भी पुलिस वालों को रखते हैं, काहे के लिए? रक्षा करना माने जे भाग ना जाए, और एक मिनिस्टर की रक्षा करने के लिए पुलिस वाले आते हैं, इसे कोई मार ना जाए, समझ में? रक्षा दो तरह की होगी ना, क्यों? कि एक भाग ना जाए ए रक्षा, और इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाए ए रक्षा। तो ये जब बनता बेड़ी है, शरीर जेल है, तो ये आत्मा कौन हुआ और जो परिजन माने कुटुंबी जन कैसे रखवाले हुए जो भाग न जाए, घर छोड़ के भाग न जाए? तो ऐसे संयोगों में ये आत्मा है और इसके अंदर राग द्वेष से मेला है। अब क्या करना कि ऐसे ही आत्मा का ध्यान करें राजमल जी साहब, तो भयंकर इन्फेक्शन होने वाला है, समझिए ना, बीमार हो जाओगे। और यदि हम ऐसे मेले कुचेले आत्मा का ध्यान करें ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मेला कुचेला है, अब ध्यान कैसे करें? दूसरे की आत्मा का ध्यान करने से तो कल्याण होता नहीं है, ध्यान तो करना पड़ेगा अपने ही आत्मा का, वो है मेला कुचेला। तो वो ज्ञानी जन क्या करते हैं कि वो फटकरी निर्मली डालते हैं, पानी को निर्मल करते हैं ना, ऐसे ही शुद्ध निश्चय नय की फटकरी डालकर उस पानी को निर्मल कर लेते हैं। तो वो पहले ये जानते हैं ना कि ये पानी अलग है और मैं अलग है, क्यों? अन्यथा वो ऐसा प्रयोग नहीं करें। यदि वो जाने के पानी और मैल एक ही हो गए हैं तो फिर कोई प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो पानी जुदा है और मैल जुदा है और इसे अलग किया जा सकता है, इतना वो जानते हैं। राग देश अलग है और भगवान आत्मा अलग है, शरीर अलग है और भगवान आत्मा अलग है, स्त्री पुत्र आदि अलग है और भगवान आत्मा अलग है, ऐसा वो जानते हैं। इकट्ठे मिले हैं तब भी अलग हैं, क्यों? क्योंकि वे अलग किए जा सकते हैं, क्यों? तो वो शुद्ध निश्चय नय की फटकरी डालकर कुछ भगवान आत्मा को निर्मल बनाकर उसका ध्यान करते हैं और उनको सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है और वे सुखी हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो अब दिक्कत हमारी ये है कि वो जो पानी है वो दिखता तो अभी हमें मेला है, अभी तुम निर्मलता उसमें देखना चाहो, कोई कहे दिखा दो तो दिखा नहीं सकते, वो तो शुद्ध नय की दृष्टि से ही दिखेगी। वो तो ज्ञानी जन समझाएंगे कि जो मेला पानी है ये मेला नहीं है, इसमें मेल जुदा है और पानी जुदा है। कैसी विचित्र बात है, क्या कह रहे? ये जो मेला पानी है इसका नाम है व्यवहार नय, पहले तुम ये स्वीकार करो कि ये पानी मैला है विभाग में से, लेकिन इस पानी में मैल जुदा है और आत्मा जुदा है, ये नाम है व्यवहार का निषेध। हम उसने जो बात कही ना मैला पानी, उसको निषेध कर रहे है ना, ये पानी मैला है। देखो ऐसे कहते, देखो ये जो अपना शरीर है ना, सकते मीरा ये अपना नहीं है, है? तो तुम ही कह रहे कि अपना शरीर है, वो अपना नहीं है, क्यों? तो ये अपना शरीर है, इसका नाम है व्यवहार की स्थापना, और ये अपना नहीं है, ये है व्यवहार का निषेध, माने निश्चय की स्थापना। ये स्त्री पुत्रादिक हैं अपने, वे अपने नहीं है। कि क्या मतलब इसके कहने का मतलब, अपने हैं और अपने नहीं है, कि हम जो तुमसे कह रहे हैं कि शरीर अपना नहीं है, स्त्री पुत्रादि अपने नहीं है, वो ये मत समझना कि तुम्हारा शरीर हमारा नहीं है और तुम्हारी स्त्री पुत्रादिक हमारे नहीं है, ये बात नहीं है। समझ गए ना क्या कहता हूं, कि तुम्हारा शरीर हमारा नहीं है और तुम्हारे स्त्री पुत्रादिक हमारे नहीं है, ये बात तो सब जगह जानता है, फिर भी कहता है, ऐसा कहता ना। हमें कोई अपने घर पर ले जाता है तो कहते पंडित जी आपका आपकी कुटिया है, क्यों? तो घर पर ले जाता है तो कहते ये आपका बड़ा बच्चा है, ये आपका छोटा बच्चा है, क्यों? कहते कि नहीं कहते, वो भी जानते हैं कि इनका नहीं है, ये मेरा है, और वो सुनने वाला भी जानता है कि इसका अर्थ ये है कि इनका है। वो ये नहीं कहता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा भी यहाँ कोई मकान है और हमारे बाल बच्चे भी है। मैंने कहा तो उनको भी जाता है जो दूसरों के हैं, मेरे कहने का मतलब, लेकिन उसकी यहाँ बात नहीं है। लेकिन जिसे वास्तव में कोई नए अपना नहीं कहता, अपनी स्त्री को अपनी स्त्री कहता है ना, अपने शरीर को अपना कहता है ना, पर स्त्री को पर शरीर को तो अपना नहीं कहता है ना। तो ऐसे व्यवहार में कि पहले स्थापना होती है और फिर उसका निषेध होता है, और इस पद्धति से वो निर्मल भगव आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कपड़ा है ना, तो उसे साबुन लगाए बिना साफ नहीं होता, और साबुन लगाए रखो तो साफ होता नहीं है। तो कपड़ा पहले मैला है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? फिर इसमें मैल जुदा है और कपड़ा जुदा है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? और मेल निकल सकता है और कपड़ा नहीं निकले, ऐसा हो सकता है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? इतना मानने के बाद फिर साबुन लगाना पड़ेगा और फिर धोना पड़ेगा साबुन को, तो कपड़ा निर्मल निकलेगा। इतनी प्रक्रिया में आपको पार होना पड़ेगा। वही बात ज्ञानी गाथा में कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में से समझना तो, लेकिन अनुसरण नहीं करना उसका, समझ गया ना। तो अब वो कैसे, जो बहुत मार्मिक बात है, चार प्रकार का होता है व्यवहार में और चार प्रकार का होता है निश्चय में। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, और मेरा विश्वास है कि ये चार व्याख्यान अपन को मिले हैं, इनमें मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा उस भगवान आत्मा का। देखिए, हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से हमें जो भी चीज प्राप्त हुई है, कर्मों के उदय से, आज कर्मों के उदय से, उनको हम दो भागों में बांटे हैं। एक तो अघातिया कर्मों के उदय से जो कुछ मिला है उसका नाम है संयोग। ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर, ये सब इसका नाम है एक संयोग, और इनकी प्राप्ति में निमित्त है अघातिया कर्म का उदय। और इसमें पुण्य पाप दोनों ही हो सकते हैं निमित्त, क्योंकि अच्छा शरीर पुण्य के उदय से मिलेगा, तो काला कलूटा कुरूप गंदा मेला कुटेला रोगी शरीर पाप के उदय से मिलेगा। तो पुण्य पाप के उदय से जो भी संयोग प्राप्त होते हैं, जो स्त्री पुत्रादिक से लेकर नगर देश गांव से दुनिया तक है, तो ये इनको विषय बनाने वाला नए का नाम है असद्भूत। क्यों है? क्योंकि ये अपने हैं नहीं, اس لیے اسد بھوت. اور اسد بھوت ویوہار نئے تو یہ اپنے ہیں نہیں اور اپنے کہے جاتے ہیں اس لیے ویوہار. جو اپنا ہوئے نہیں اور اپنا کہا جائے اس کا نام ہے ویوہار. تو یہ استری پتر مکان ناجا نگر دیش گاؤں یہ اپنے ہیں نہیں اس لیے یہ اسد بھوت اور انہیں اپنا کہنا اس کا نام ہے اسد بھوت ویوہار. وہ کون کہے گا یہ اس بات کو کون جانے گا؟ تو اجانی کی بات نہیں ہے تھا بھائی کہ اسد بھوت ویوہار نئے نئے مانے یہ سمیہ جان کا انش ہے. پھر کہتا ہوں یہ استری پتر مکان جائیداد اور شریر اپنے نہیں ہیں اس لیے اسد بھوت, اپنے کہے جاتے ہیں اس لیے ویوہار, اور یہ جنوانی میں کہے ہیں یہ سمیہ جان کا انش ہے اس لیے نئے. تو اس کا نام ہو گیا اسد بھوت ویوہار نئے. اب دیکھیے اس میں ایک ایک شبد ایک ایک چیز کو بتا رہا ہے. جیسے کہ حکم چند جین بھارند, تو حکم چند ویکتی کو بتا رہا ہے, جین دھرم کو بتا رہا ہے, بھارل گوتر کو بتا رہا ہے, پھر بھارتی وہ ہمارا دیش کو بتا رہا ہے. تو ایک ایک شبد کا ایک ایک ارتھ ہے, اس میں سے ہم جو چیز ہٹا دیں گے وہ غائب ہو جائے گی. اس لیے اتنا بڑا نام رکھنا پڑے گا. کتنا نام؟ اسد بھوت ویوہار نئے. اس سے سارے سنیوگ اپنے کہے جاتے ہیں. تو سارے سنیوگ میں نے کہاں سے؟ دیہ سے لے کر ساری دنیا تک. لیکن کون؟ جو ہمارے پن پاپ کرم کے ادے سے ہمیں پراپت ہوئے ہوں. جو پن پاپ کرم کا ادے جس میں نمت نہیں ہے, بے نہیں, الوکا کاف نہیں, کیونکہ ہمیں وہ پراپت نہیں ہوا. اس کی مال کی ہم نہیں کبھی مانتے کہ میں الوکا کاف ہوں. ہندوستان ہمارا ہے تو کہتے ہیں نا, لیکن امریکہ کو تو اپنا نہیں کہتے نا, تو وہ امریکہ نہیں لینا, ہندوستان لینا. سمجھ گیا؟ ہمارے پن پاپ کے ادے سے جو ہمیں پراپت ہیں ان سنجوگوں کو جو اپنا کہے اس کا نام ہے اسد بھوت ویوہار نئے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اس کے بھی دو بھید ہیں, ایک اپچرت اسد بھوت ویوہار نئے اور ایک انپچرت اسد بھوت ویوہار نئے. یہ کیا چکر ہے؟ اپچرت مانے دور کا اور انپچرت مانے پاس کا. شاستری شبد سنسلشٹ اور اسنسلشٹ شبد ہیں. اب آپ کو شبد اتنے کٹھن ہیں کہ یاد رہنا مشکل پڑ جائے گی نا. یہ دور کا اور پاس کا, دور کا سمبند اور پاس کا سمبند ہے. دور کا سمبند ہے اسے بولتے اپچرت, اور پاس کا سمبند ہے اسے بولتے انپچرت. اس کو سرل بھاشا میں بتاؤں کہ جنم سے لے کے مرن تک کا جس کا ساتھ ہے وہ انپچرت, اور جو بیچ میں ہی آوے اور بیچ میں ہی چلا جائے اس کا نام اپچرت. استری پتر مکان جاجا نگر دیش گاؤں. کیوں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنم سے پراپت ہو گئے ہوں, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بعد میں ملے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے مرنے تک ہمارے پاس رہیں, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے مرنے کے پہلے ہی چلے جائیں. تو جن کا سمبند جنم سے لے کے مرتو تک نہیں ہے انہیں دور کا سمبند ہی کہتے ہیں, اور جن کا سمبند جنم سے مرتو تک ہے انہیں پاس کا بولتے ہیں. تو شریر ایک ایسا ہے کہ جس کا جنم سے لے کے مرتو تک ہمارا ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے شریر کو بولتے ہیں انپچرت اسد بھوت ویوہار نئے سے اپنا ہے. اور استری پتر مکان جائیداد ننگر دیش گاؤں اور دنیا اس کا نام ہے اپچرت اسد بھوت ویوہار نئے سے اپنا ہے. اس کا نام اپچرت کیوں رکھا؟ اس کا نام انپچرت کیوں رکھا؟ اس کا بھی کارن ہے حکم دن. جس کے ساتھ اوپچارکتا نبھانی پڑے وہ اپچرت, اور جس کے ساتھ اوپچارکتا نہیں نبھانی پڑے اس کا نام انپچرت. دیکھو آپ میرے گھر آئیں और यदि मैं चड्डी बनियान में बैठा हूं तो फटाफट धोती पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, कहूंगा आइए बैठिए। क्यों? माने मुझे आपको कहना पड़ेगा आइए बैठिए, चाय पानी लेंगे कि नहीं, पर मुझे अपने को भी संभालना पड़ेगा। क्यों? और हमारा बच्चा आता है तो बैठे वैसे ही बैठे रहते हैं, उसे कहते हो भैया पानी पियोगे, चाय लोगे, बोलते हो कभी बोला किसी ने? मैं उसके साथ हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी है, मतलब सुनेंगे ना, फिर भी चड्डी बनियान पहने तो बैठे रहोगे, लेकिन बाथरूम में नहा रहे हो बिना चड्डी बनियान के तो उसके बाहर नहीं आओगे। इतनी औपचारिकता उसके साथ नहीं निभानी है। क्या? और जरूरत पड़ेगी, तबीयत खराब होगी तो पूछना भी पड़ेगा, इसलिए वो भी उपचरित में है। लेकिन जैसे अपना शरीर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कभी ऐसा नहीं पूछते हो पंडित हुकुमचंद तुम चाय पियोगे कि नहीं? क्यों? माने जिसके साथ हमें कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़े वो वास्तव में अनुपचरित है, और जिसमें किसी प्रकार की भी औपचारिकता निभानी पड़े, ख्याल में है ना, उसका नाम है उपचरित। तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और दुनिया, इनके साथ औपचारिकता निभानी पड़ती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया उपचरित असद्भूत व्यवहार में। और शरीर के साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। अब इतना लंबा नाम हो गया कौन, उपचरित असद्भूत व्यवहार और नय, छोटा नाम रख लो ना, इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा? क्यों? तो कहते देखो ये दूर का संबंध है, ये बताने के लिए उपचरित कहना जरूरी है, ये संयोग है ये बताने के लिए असद्भूत कहना जरूरी है, ये अपना है नहीं और अपना कहा जाता है ये बताने के लिए व्यवहार में जरूरी है, और ये कहने वाला सम्यक ज्ञान का अंश है ये बताना नए कहना जरूरी है। बोलो क्या छोड़ दें? हैं? इसलिए घबराओ नहीं, एक एक शब्द का एक एक अर्थ है। तो अब क्या नक्की हो गया, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश और सारी दुनिया ये अपनी है। इस चार चीजें लेना इसमें, ये मेरी है, ये मैं हूं और मैं इनका कर्ता और भोक्ता हूं, ये चार चीजें आई, इसका नाम क्या हो गया, उपचरित असद्भूत व्यवहार में। अब इसकी इतने सफेद झूठ कि सारा हिंदुस्तान हमारा है, अगर एक इंच जमीन भी अपनी नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो कहते भैया देखो इस नए को नहीं मानोगे, इसकी उपयोगिता क्या है ये समझ लो पहले, तो वो आदमी आदमी नहीं रहेगा, जानवर बन जाएगा। कैसे? कि ये स्वस्त्री और ये परस्त्री, ये भेद तो इस नए से है, ये मेरा घर ये तुम्हारा घर, ये भेद तो इस नए से है, ये मेरी संपत्ति ये तुम्हारी संपत्ति, ये भेद तो इस नए से है ना। यदि हम इस नए को नहीं मानेंगे तो स्वस्त्री और परस्त्री बराबर होगी, तो जैसे पशुओं में होता है ना, वह स्वस्त्री परस्त्री का भेद ही नहीं है, अपने वो पराये धन का भेद ही नहीं है, तो हमारी हालत पशुओं जैसी हो जाएगी और या मुनिराजों जैसी हो जाएगी। क्यों राजमन जी साहब? क्योंकि हम परस्त्री को स्वस्त्री जैसा मानेंगे तो पशुओं जैसी हो जाएगी, वो स्वस्त्री को परस्त्री जैसा मानेंगे तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। क्या समझे ना? पर धन को अपने धन जैसा मानेंगे तो चोर हो जाएंगे, और अपने धन को पराय धन जैसा मानेंगे तो अपरिग्रह परिग्रह त्यागी हो जाएंगे। तो एक ग्रस्त धर्म नहीं रह सकता, तो एक ग्रस्त धर्म है वो इस नए से है। बोलो बोलो, इस नए को मानना कि नहीं मानना, कि पांच अणु में किस नए से है। सर्वनाम योग पर चौकड़ी मारनी पड़ेगी। यदि इस नए को नहीं माना पवैया जी तो सारे सर्वनाम योग पर चौकड़ी मारना पड़ेगी, क्योंकि पांच पापों का त्याग, अनुवृतों का धारण, महावृतों का धारण वो इसी नए के आधार पर होता है। इतना नहीं समझ लेना कि इतना छू करके उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। ये आदमी को आदमी बनाने वाला नए है, और सारी दुनिया मानती तो है, भले ही मुंह से कहे चाहे ना कहे, ये मानते ना स्वस्त्री परस्त्री का भेद। जब कोई हमारा है ही नहीं निश्चय नए से तो फिर उसमें स्वस्त्री परस्त्री का भेद कैसे खड़ा होगा, स्वधन और परधन का भेद कैसे खड़ा होगा। अच्छा तो चरणानी योग साफ और पुष्मानी योग का क्या होगा। ऋषभ देव के कितने बेटे थे, भगवान ऋषभ देव की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा ऋषभ देव की बात कर रहा हूँ। भगवान नहीं, मूर्खों की सभा है, मैं जानता हूँ। ये भी कह देंगे भगवान के बेटे होते ही नहीं है, तो राजा ऋषभ देव के कितने बेटे थे, सौ थे, एक दो कहता है, दो भी मान लो, सौ भी मान लो, क्या दिक्कत है। लेकिन बेटे थे कौन से, नए से थे, उत्तरित असद रूद व्यवहार नए से, क्योंकि निश्चय नए से तो कोई किसी का होता ही नहीं है। क्यों तो प्रथमान योग पर चौकड़ी फेरनी पड़ेगी, बोलो स्वीकार है। चक्रवर्ती भरत बोलो, तो चक्रवर्ती माने छह खंड की विभूति और उसका मालिक, तो ये छह खंड की विभूति का मालिक नहीं मानेंगे तो चक्रवर्ती कैसे रहेगा प्रथमान योग का, बोलिए। सानू हजदार उसकी पत्नियां कैसे रहेंगी स्वस्थी परस्ती का भेद नहीं मानेंगे तो। सारे प्रथमान योग पर चौकड़ी मारनी पड़ेगी, सोच लो। अभी आप चार अनुयोगों से दो अनुयोग की छुट्टी होती है। ये नए इतना हल्का नहीं है कि झूठा लाल कहकर इसकी मजाक उड़ाई जाए। जिनवाणी के दो अनुयोग इस बात पर खड़े हुए हैं और हमारा सदाचारी जीवन इस पर आधारित है। तो सदाचारी जीवन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। जिस आत्मा के समझने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा भी तुम संभव नहीं है। तुम किसी सभा में बैठने लायक भी नहीं रहोगे यदि अपनी बहन माँ बहन का भेद नहीं किया, स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं किया, तो इस सभा में कोई तुम्हें बैठने नहीं देगा। खबर में है कि नहीं। तो इस नए की हमारे सदाचारी जीवन की दृष्टि से उपयोगिता है। कौन सा नए का नाम है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। ये सदाचारी हमें बनाने वाला नए है। तोले से रखना कि नहीं रखना, ये जरूर रखना, नहीं तो हमारा जीवन सदाचारी नहीं रहेगा। और इसे रखकर अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव ये रखना के छोड़ना मोक्ष जाने के लिए, बोलो छोड़ना पड़ेंगे ना, छोड़ जाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये जो तो फिर जिसको ये नए अपना कहता है उस नए को हे कहें कि नहीं कहें। ये हे माने ये पदार्थ छोड़ने लायक हैं तो इन्हें अपना कहने वाला नए असत्यार्थ है, हे है, ये कहें कि नहीं कहें। यदि ये नहीं कहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बोलो। इसलिए व्यवहार नए भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। अगले तेरहवीं गाथा आएगी उसमें कहेंगे भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। अब किस अपेक्षा भूतार्थ है, सदाचारी जीवन के लिए भूतार्थ है, समझे ना। और स्त्री पुत्रादि को छोड़े बिना मुनि दशा आएगी नहीं, इसलिए ये अपने नहीं है, अभूतार्थ है। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी मान के छोड़ना है कि ये हमारी नहीं है ऐसा मान के छोड़ोगे, ये स्त्री पुत्रादि हमारे नहीं है, ये परिग्रह हमारा नहीं है ऐसा मान के छोड़ोगे, है तो हमारा और हम छोड़ते हैं क्यों। अरे श्रद्धा और ज्ञान में तो ये स्वीकार करना ही वास्तव में छोड़ना है। छूटने का कोई हमारे हाथ में है छूटना, वो तो लोक का पदार्थ तो लोक में ही रहेगा ना, हमें उसे अपना मानना छोड़ना है, अपना जानना छोड़ना है, दुनिया में थोड़ी छोड़ना है। मैं वैराग्य भावना पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कोड़े अथारे घोड़े छोड़े चौरासी लाख हाथी इत्यादि की संपत्ति बहु तेरी वीरण त्रैण समय त्यागी। मैं तो घबरा गया, ये घोड़ा छोड़े बाजार में बिना घुड़सवार के तो कितना उपद्रव मचा देता है, और हाथी जरा पागल हो जाए तो क्या हो जाता है। आप जानते हैं पुराने जमाने में भगवान बनने के लिए एक बहुत जरूरी चीज थी, घबराना नहीं, कि एक सांप को और एक हाथी को बस में करना बहुत जरूरी था। आपको बहुत अनपता लग रहा होगा कि समय सार का वाला पंडित क्या बोल रहा है। उस जमाने में इस देश में सांपों का और हाथी के उपद्रव का बहुत डर था। जब हाथी जरा बेकाबू हो जाता था तो गांव के गांव उजाड़ देता था, और सांप किसी को काट खाता था वो मर जाता था। और ये सांपों वाला देश तो कहलाता ही है, क्योंकि अहिंसक देश था तो कोई मारता था नहीं उन्हें। तो जो सांप से और हाथी से बचाए उसे हम बढ़, चाहे वो श्री कृष्ण हो तो उन्हें भी नागिया का दमन करना पड़ेगा, एक हाथी को काबू में करना पड़ेगा, चाहे वे महावीर हो। क्यों महावीर महावीर इसलिए बन गए कि उन्होंने एक हाथी को काबू में कर लिया था, और वे अतिवीर इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने सांप को काबू में कर लिया था। किसी भी धर्म के भगवान की बात कर लेना, उनके साथ ये दो घटनाएं तो जुड़ी हुई होंगी, नहीं जुड़ी होंगी तो हम पंडित लोग जोड़ देंगे जबरदस्त। उसके बिना उसकी देश में सर्वोच्चता सिद्ध नहीं होती थी, समझे ना। तो एक हाथी छूटे तो क्या होगा, 84 लाख हाथी छूटेंगे तब क्या होगा, 18 करोड़ घोड़े छूटेंगे तब क्या होगा। तो मैंने घबराया तो बोले पंजी घबराओ मत, घोड़े तो घुड़सवार में ही है, हाथी तो हाथी की जगह है, तो छोड़े क्या, उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें अपना मानना छोड़ा, उनसे राग तोड़ा, इसका नाम छोड़ा है। तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद तो जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। इस मकान को तुम छोड़ोगे तो मकान भोपाल छोड़ के नहीं जाएगा, तुमको ही भोपाल छोड़ के जाना पड़ेगा, समझ गए ना। स्त्री पुत्र आदि के इस जगत में नहीं रहेंगे, तुम छोड़ दोगे तो रहेंगे ना। तो वो तो हमें अपना मानना और जानना छोड़ना है, उनसे राग तोड़ना है, और कोई छोड़ना फोड़ना नहीं है, घबराना नहीं, सब यहीं के रहने वाले हैं। जब तक तेरे पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, तो ये संयोग रहेंगे, और वो जो क्षीण हो जाएंगे तो अपने आप बिखर जाएंगे, तुम कितनी कोशिश करना ये रुकेंगे नहीं, है ना। तो ये नए सदाचार की सिद्धि करने वाला है, और इनको छोड़े बिना, इन्हें अपना मानना छोड़े बिना सम्मा दर्शन के पास तक नहीं फटकोगे बेटा। बोलो सम्मा दर्शन चाहिए कि नहीं। तो ये व्यवहार में कि उपादेयता भी है और हेयता भी है, जैन धर्म में उसे उपादेय भी करे, भूतार्थ भी करे और अभूतार्थ भी करे, एक सांस में दोनों बातें करे। अब दूसरा है, दूसरा नय कौन सा है, अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय। अनुपचरित माने नजदीक का संबंध, माने शरीर का, अकेला शरीर संयोगों में। तो ये भाई साहब, यदि ये जीव और शरीर इन दोनों का संयोग है ना, पंडित भगवान किसका नाम है, उनको यदि तुम जीव नहीं मानोगे तो समय सार की 46वीं गाथा में लिखा है, इसी समय सार की, ये मत समझना कि तुम पढ़ते तो हो ही नहीं, अपनी तरह से ठोक रहे हो। अरे हम सारी 22 घंटे पढ़ते हैं, हमको 1 घंटा पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों अब क्या पढ़े हम समय सार, समय सार का 650 पेज टीका लिखी है, 2250 पेज का अनुशीलन लिखा है, 400 पेज का समय सार का साल लिखा है, और प्रवचन रत्ना करके 4000 पेज गुरुदेव के उनका संपादन किया है, अब और कितना पढ़वाओगे तुम हमें समय सार, क्यों समझे नहीं। हाँ तो क्या बात कर रही थी, कि इस शरीर को लिखा 46वीं गाथा में क्या लिखा है टीका में, कि यदि तुम शरीर और जीव इन दोनों के मिक्सचर को जीव नहीं मानोगे तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती ना, ऐसे ही त्रिशिष्टावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। अब बोलते हो ना, तो देख के चलो जीव है, जीव है, यदि इनको जीव नहीं मानोगे तो आपके पैर के नीचे आके मरेंगे, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? तो अहिंसात्मक आचरण के लिए इन्हें जीव मानना, ध्यान करने के लिए इन्हें जीव नहीं मानना, स्त्री पुत्रादि को अपना सदाचार के लिए मानना, असदाचार के लिए नहीं मानना, अहिंसक आचरण के लिए इन्हें जीव मानना। एक भाई हमसे बोले, पंडित जी को एक लड़का है आपकी दृष्टि में? हम कहा हाँ, लड़के लड़कों की क्या कमी है इस देश में? बोलो काय के लिए चाहिए? अरे बहस करते हो, काय के लिए चाहिए, मुझे तो बताओ ना। मैंने कहा भैया, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि हमें किस काम के लिए चाहिए, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अरे तुम्हें चौका बर्तन करने के लिए चाहिए कि जमाई बनाने के लिए चाहिए कि दूध लेना है? तुम बताओ ना क्या चाहिए, ऐसा लड़का बताया जाएगा ना? क्यों चौका बर्तन के लिए चाहिए हो तो दूसरा लड़का बताया जाएगा, जमाई बनाना हो तो दूसरा बताया जाएगा, क्यों गोद लेना हो तो कैसा बताया जाएगा? क्यों ठीक है ना? तो जीव भी बहुत तरह के हैं। वो ध्यान करने वाला जीव अलग है, वो कौन सा है? वो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है वो जीव ध्यान करने लायक है। और ये जो स्त्री पुत्र वाला जो जीव है ना, ये सदाचार वाला जीव है। और ये अहिंसक आचरण वाला जीव है, देह और आत्मा इसका मिक्सर है, वो जीव है। जीव सब हैं, लेकिन हर एक अलग अलग काम के जीव हैं। समझ में बात क्या नहीं आई? जीव जीव की बात है, सारी दुनिया जीव जीव कहती है, लेकिन कौन सा जीव? वो ध्यान करने वाला जीव चाहिए, अपनापन स्थापित करने वाला जीव चाहिए, कि दया पालने वाला जीव चाहिए? बोलो, सदाचार की सिद्धि करना हो तो स्त्री पुत्रादि ये सब जीव हैं, अपने हैं। यदि अहिंसक आचरण की सिद्धि करना हो तो देह और आत्मा के मिक्सर का नाम जीव है। इसे जीव नहीं मानोगे तो चार हाथ जमीन देखकर क्यों चले मुनिराज? बोलो, तो जीव ना मर जाए इसीलिए चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बोलो, इस नय को नहीं मानेंगे तो क्या खतरा पैदा हो जाएगा? राजनंदी साहब, फिर आपका चरणानियों पर चक्कर आ गया, फिर चरणानियों हो गया ना? क्यों अहिंसक आचरण तो चरणानियों का ही ना, चार हाथ जमीन देख के चलो, किसकी बात है? फिर हिंसा को त्याग व्यथा सावन न समान है, क्यों सर्वि तरफ हिंसा तरी रागादि भाव निवार से हिंसा न भावित अब तरी। ये सारी पंक्तियां जो हमारे चरणानियों की है वो इस नये के आधार पर है। बोलो, इस नये को सत्ता मानना कि नहीं मानना? मानना ना। अब बोलो कि इस शरीर के साथ मोक्ष में जाओगे क्या? तुम्हें छोड़ के जाओगे? बोलो, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एक आदमी चल पड़े नहीं तो यही खड़े रह जाओगे। शरीर से तो कोई मोक्ष में जाएगा नहीं, क्यों? तो इस शरीर से एकत्व बुद्धि तोड़ना क्या नहीं? अरे सारे जैनागम का सार है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। क्यों? शरीर से तो आज तक किसी को मोक्ष मिला नहीं है, तो शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि शरीर को छोड़ने के पहले शरीर को अपना मानना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ोगे और शरीर छोड़ दोगे तो दूसरा शरीर से बढ़ जाएगा। क्यों? उसे अपना जानना छोड़ना होगा, फिर उससे राग तोड़ना होगा, तब जाके बेटा ये शरीर छूटेगा, ऐसे ही नहीं छूटने वाला है। क्या तो ये मैं ये जाने के नहीं जाने तो जाने तो शरीर को जो अपना कहने वाला है उसमें कोई झूठा लाल माने के नहीं माने बोलो आप बातें तो ये बात सच्ची नहीं है। शरीर अपना तीन काल तीन काल में नहीं हो सकता है ऐसा कहते हैं कि देखो शरीर को छोड़ना तो पड़ेगा ये गारंटी की बात है ना। किसी को साल दो साल में किसी को दस बीस साल में किसी को पचास साल में और कोई नई उम्र का बच्चे हुए तो उन्हें सौ साल में से क्यों तो भैया जी हमें तुम्हें तो दो चार साल में ही छोड़ना पड़ेगा तो नहीं छोड़ोगे क्यों साहब छोड़ना पड़ेगा ना इतना तो नक्की है ना। तो जो खड़े खड़े इस घर को छोड़ देंगे इसलिए तो मकान घर छोड़ना पड़ेगा ना जो खड़े खड़े छोड़ के चले जाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं अड़ियल किस्म के तो वो अड़ जाते हैं क्यों उन्हें धक्का मार के निकालो पकड़ के निकालो तो वो एकदम लेट जाएंगे के बाद पकड़ लेंगे इसे चेंट जाएंगे ये कर लेंगे ना तो लोग चार दो जने पैर पकड़ के दो जने हाथ पकड़ के उठा के ले जाएंगे क्यों तो ऐसे जो अड़ियल किस्म के लोग होते हैं वो जीते जीते तो छोड़ते नहीं है अब मर जाए फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो फिर जब उसको घर में जब मर जाते हैं तो सारे पंच इकट्ठे होकर एक वो छतरी होती क्या होती है उस पर अच्छी तरह कस के बांधते हैं। क्यों बांधते हैं कि इसकी बहुत खराब आदत थी ये सुबह जाता था तो शाम को लौट के घर आ जाता था ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है ये अड़ जाएगा तो उसे कस के बांध के लेके चलो जिससे ये लौट के वापस आने की संभावना नहीं है उचक के कभी लौट के घर के भाग के आएगा तो फिर वहां ले जाके मसान में उसको लकड़ियों से ढका करके आग लगाते हैं क्यों कि यदि ये नहीं गया तो आए बिना वापस रहेगा नहीं खत्म कर दो खत्म कर दिया जल गया तो तीसरे दिन जाकर के उसकी हड्डियां और राख इकट्ठी करती है क्यों कि इसकी आने की आदत है अभी यार हवा चलेगी तो लौट के घर में ना आ जाए इसलिए देखे गंगा जी में सरा के आओ बह जाए क्यों फिर भी मर के भूत बन गया बहुत खराब आदत है इसको कब घर को छोड़ने की आदत नहीं है और भूत बन के आएगा तो किलवाएंगे वे ही बेटे है ना। अब किलते के नहीं किलते तो अलग जानो जब इस पेड़ में एक किल ठोक दी पीपल में यहाँ किल गया अब वो सारा जिंदगी भर तक यही किला रहेगा। तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने सगे बाप को हजारों वर्ष के लिए वहां किल रहे हो जिसकी सारी संपत्ति तुमने पचा ली है छोड़ना तो पड़ेगा ये नक्की है स्त्री पुत्र मकान राजा नगर देश गांव और शरीर को तो इस छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ेंगे तो आत्म कल्याण होगा और जो हमें छोड़ेगा तो फिर हम संसार नहीं उलझेंगे। तो छोड़ने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये हमारे नहीं है क्योंकि हम ये मानेंगे कि ये हमारे हैं और फिर छोड़ेंगे तो बहुत दुख होगा और हम मान लेंगे कि हमारे नहीं है और फिर छोड़ेंगे तो बहुत सरलता से छूट जाएंगे। तो बोलो इस जो इस नए का निषेध करना जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है और शरीर को अपना कहता है क्यों निषेध करना की जरूरत है क्या नहीं। अरे जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय ऐसा क्या नहीं जब शरीर भी अपना नहीं है स्त्री पुत्र अपने कैसे हो सकते हैं। ये मेन तिलक है शरीर मेन तिलक समझते हैं अभी कुछ गड़बड़ हो जाए और ये लाइट हमें बुझानी हो तो क्या करें कितनी हवा करें पंखा चलाएं बुझ जाएगी ये बटन दबाओ और बटन दबाने से भी एक बुझेगी सारी हॉल की बुझाना है तो मेन तिलक को दबाओ तो ये बुझेगी। तो सबका मेन तिलक कौन है ये शरीर हमारे माँ बाप क्यों है क्योंकि शरीर के माँ बाप हैं। हमारे बाल बच्चे कौन हैं? शरीर से संबंधित हैं। पत्नी कौन है? शरीर से संबंधित। तो शरीर के मेन तलक है। तो हमने कह दिया शरीर ही हमारा नहीं है, तो सब का एक झटके में साफ हो गया। हमने स्त्री छोड़ी, बुद्धि छोड़ी, ये छोड़ी, वो छोड़ी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों साहब? क्या साहब, पंडित जी आपने हमें समझाया था तो हमने आधा काम तो कर लिया है। तो क्या कर लिया है कि माँ बाप को तो छोड़ दिया है। क्या? वो तो बेटा जब तो सात फेरे पड़े थे ना, और पत्नी आई थी उसी दिन नक्की हो गया था कि माँ बाप की छुट्टी होने वाली है। क्यों? बेटा भाई जी में सही हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब एक साथ छूटते हैं। कोई जब नंद दिगंबर मुनि पद धर्म लेता है तो स्त्री पुत्र माँ बाप परिवार सब भाई बहन सब एक साथ छूटते हैं कि नहीं? ऐसा कहेगा कि अकेले मैंने माँ बाप को छोड़ दिया मुनि धर्म हो जाएगा? नहीं होगा। जो चेतन परिग्रह होता है ना, वो सब एक साथ ही छूटता है। अचेतन में तो आप ऐसा भेद कर सकते हो। जो एक मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, चक्रवर्ती के अनुग्रह क्यों नहीं होते? वो तो शास्त्र में तो लिखा है, पार्श्वनाथ भगवान ने 12 वर्ष के भरे हुए अनुग्रह तो धरे सुख जब अष्टम वर्ष, लेकिन महापुरुषों के अनुग्रह नहीं होते। वैसे उनका जीवन ही अनुग्रह जैसा ही होता है, लेकिन कायदे से नहीं होते हैं। क्यों? ये तो हीन पुरुषार्थियों का काम है कि धीरे धीरे छोड़ें। उग्र पुरुषार्थियों में तो एक झटके में छोड़ सकते हैं। अब चक्रवर्ती को परिग्रह परिमाण वृत्त लेना है तो क्या करे? बोलो, छह खंड में से तीन खंड छोड़ देवे और तीन खंड रखे, 96,000 पत्नियों में से 48,000 रखे और 48,000 छोड़ दे। और छोड़ेगा तो एक कैसे नक्की करेगा किन किन को छोड़ना और किन किन को रखना? छोड़ सकता है? बोलो, मुझे बताओ। या तो 96,000 को ही छोड़े और नग्न दिगंबर मुनि हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और एक को, एक इसको छोड़ा, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अनुमित होंगे कैसे? सेकंड की विभूति में प्रमाण नहीं किया जा सकता परिग्रह में है, और स्वस्थ पत्नियों में नहीं छोड़ा जा सकता। चेतन अचेतन दो ही परिग्रह नहीं छोड़े जा सकते। क्यों? 60,000 बच्चे से आधों को छोड़ दिया, आधों को रखे। क्यों? तो जिनके बच्चे आगे छोड़ के चले गए बाहर, तो उनके तो आधा परिग्रह का त्याग हो गया ना। तो एक बच्चा, 5 तो चले गए। कब हो गया? 20 नहीं, चेतन परिग्रह में ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसी मर्यादा नहीं होती किसको छोड़ा किसको नहीं छोड़ा। तो जिनकी इतना परिग्रह होता है, जो महापुरुष चक्रवर्ती जैसी, इसलिए उनके अनुमति नहीं होते हैं। व्यवहार से आप कुछ भी कहो, आचरण तो उनका सदाचार में होता ही है, इसलिए वो कोई कहो तो कोई अपराध नहीं है। नए निश्चय रहते निश्चय में से आप भी अकड़ गिरी हो। अभी तो इससे चलो, अभी दो सीढ़ी चढ़े हैं, 8 चढ़नी है। अभी दो सीढ़ी चढ़े हैं, 8 चढ़नी है। अपने पास 4 दिन है तो 2 तो कर जाए ना आज पूरी। कौन कौन सी हुई? कुछ करे तो अचर असदगुत व्यवहार नए, इसमें शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और दुनिया, ये सब काय के लिए शास्त्र में है, सदाचार की सिद्धि के लिए और अहिंसक आचरण की सिद्धि के लिए। अब ये दो चीजें सिद्ध हो जाएं, माने हमारा जीवन में सदाचार भी आ जाए और हमारा जीवन अहिंसक भी हो जाए, तो अब इनकी जरूरत नहीं है। जब मैल निकल गया कपड़े में से, अब साबुन लगाने की क्या जरूरत है? समझे ना? अब इसे रखने की क्या जरूरत है? अभी ऐसा नहीं कि हमने ये दो नए छोड़े तो फिर लौट के वहीं पहुंच जाएं, इसलिए मेरी पुत्र मेरा मकान मेरा शरीर मेरा। ये काम सिद्ध हो गया कि ये मेरे नहीं है ना, वो सदाचार और शास्त्रता, और अब इनको हे करना। वो सदाचार और अहिंसा का आचरण कायम रहे और जो मेरे हैं मैं इनका हूं, ये मान्यता छूटे तो वो व्यवहार नय का हे है। यदि हमने व्यवहार नय को हे कहा तो फिर लौट के वहीं पहुंच गए तो समझ लो कि वो हे करना तुम्हारे लिए नहीं है, तब तक तो तुम्हें उसे उपादेय ही कहना पड़ेगा कि दोनों में उपादेय है, अहिंसा आचरण के लिए उसके लिए कहना पड़ेगा। एक दूसरे को अपनी भला बुरा कर ही नहीं सकता, कोई किसी को मार जला ही नहीं सकता, ऐसा अपने आयु कर्म की वजह से जिंदा रहते हैं, आयु कर्म की वजह से मरते हैं, ये किन के लिए है? ये दो नयों से जो पार हो गए, माने जो सदाचारी जीवन हो गया और अहिंसा आचरण हो गया, फिर उनके लिए है वो बात। अभी तो हम अपने द्रव्य की सीमा में आए हैं, अब आगे के जो नए आएंगे तो रागादि कैसे छूटे वो उसकी बात होगी। उसका नाम होगा सद्भूत व्यवहार नय। उसके भी दो भेद होंगे जिसकी चर्चा अपन कल विस्तार से